ओम शांति। 15 जनवरी 2019, अव्यक्त माँ की अव्यक्त पुकार, शांति स्तंभ के 18 अभिलेख, उसमें आज का त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, सिकिल दे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारा यह ईश्वरीय जन्म कैसा है? हीरे तुल्य है। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, सिकिल दे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारा यह ईश्वरीय जन्म हीरे तुल्य है। स्थूल हीला जो है उसमें और हम चैतन्य हीरों में क्या अंतर है? उसको कट करना पड़ता है, क्या निकालने के लिए? फ्लॉ निकालने के लिए, इम्प्यूरिटी निकालने के लिए। और तुम चैतन्य हो, धीरे धीरे फ्लॉ निकालते जाओ। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषोत्तम चोला, पुरुषोत्तम राज्य याद करो। सुबह की साकार मुरली, तो सिकिला दे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारा यह ईश्वरीय जन्म कैसा है? हीरे तुल्य है। फिर ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए आज का जो विशेष पुरुषार्थ था सुबह की साकार मुरली में 15 तारीख का, जैसे ब्रह्मा बाप ने बीज रूप स्टेज अर्थात पावरफुल स्टेज का विशेष अभ्यास करके पूरे विश्व को सकाश दी, ऐसे फॉलो फादर करो, क्योंकि यह स्टेज कैसी स्टेज है? लाइट हाउस, माइट हाउस का कार्य करती है। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, जैसे बीज द्वारा सारे वृक्ष को स्वतः ही पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित होंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली विश्व को कौन सा पानी मिलेगा? लाइट का पानी मिल जाएगा। तो ये आज सारे दिन भर का पुरुषार्थ था। कौन सा पुरुषार्थ? किस बात में फॉलो करो, किस बात में फॉलो करो? बीज रूप बनने में फॉलो करो। योग की जितनी अवस्थाएं हैं उसमें सबसे शक्तिशाली अवस्था कौन सी है? बीज। बीज अर्थात कहां की अवस्था है? ये परम धाम की अवस्था। ये उल्टा वृक्ष है। अर्द्वमूलम मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरे वयम। हे अर्जुन, ये जो सृष्टि है उल्टा वृक्ष है, इसका बीज ऊपर है और शाखाएं नीचे है, और वो बीज मैं हूं, सीड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो परम धाम में स्वयं को बीज रूप स्थिति में स्थित कर देना, ये सबसे शक्तिशाली योग की अनुभूति है। और जैसे ब्रह्मा बाप ने ये योग किया और सारे विश्व को सकाश दी और सारे विश्व को लाइट माइट दी, और यह स्थिति ही लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति है, ऐसे ही तुम भी फॉलो फादर करो और विश्व को क्या करो? कौन सी लाइट दो? कौन सी लाइट? लाइट का पानी दो। एक अव्यक्त वाणी है 27 मार्च 1982, बीज रूप स्थिति और अलौकिक अनुभूतियां, मुरली का हेडिंग। पिछले 2017 में ये मुरली चली थी, 2 साल हो गए। बीज रूप स्थिति और अलौकिक अनुभूतियां 27 मार्च 1982। उसमें बाबा ने कहा था, आवास से परे रहने वाला पाप, कहाँ आया है? आवाज की दुनिया में आया है। आवाज के द्वारा क्या करने? आवाज से परे ले जाने। आवाज से परे रहने वाला बाप कहाँ आया है? इस आवाज की दुनिया में। और किसके द्वारा? आवाज के द्वारा क्या करने? सबको आवाज से परे ले जाने आया है। बाबा ने कहा उस मुरली में, द्वापर से तुमने बहुत विस्तार किया, शाखाओं का बहुत विस्तार किया, 6 प्रकार की शाखाएं गिनाई, एक देवभान की शाखा, इसका तुमने बहुत विस्तार किया, दूसरी देह के संबंधों की शाखा, इसका तुमने बहुत विस्तार किया, तीसरी देह के पदार्थों की शाखा, इसका भी बहुत विस्तार किया, चौथी संत और गुरुओं के जंजीरों की शाखा, गुरुओं की शरण में गए, संतों की शरण में गए, इसका भी तुमने बहुत विस्तार किया, पांचवी शाखा हिसाब किताब की शाखा, और अंतिम विकर्मों की शाखा। उस मुरली में बाबा ने कहा कि तुमने द्वापर युग से इतना विस्तार करके रखा, अब बाप आए हैं तुम्हें आवाज से परे ले जाने के लिए, उसके लिए तुम्हें बाप समान बीज रूप स्थिति में स्थित होना होगा। जैसे बाप बीज रूप है, वैसे तुम भी परम धाम में उसी रूप में स्थित हो जाओ। तो जब सारे विस्तार को काटना नहीं है, उस मुरली में बार बार कहा है बाबा ने, काटोगे तो फिर आएगी। जैसे उदाहरण दिया, संसार का कोई वृक्ष अपने आप उसको पानी मिलते जाता है, सब कुछ मिलते जाता है, वो बड़ा होता जाता है, वैसे ही ये सारे वृक्ष जो है, इसको भी वायुमंडल का पानी मिला है, विकारी वायुमंडल का, हवा मिली, पानी मिला, सब मिला, इसके लिए वो बहुत मजबूत हो गए। अब उनको भस्म करो, काटना नहीं है शाखाओं को, शाखाओं को काटोगे तो शाखा फिर से आ जाएगी, और फिर बाबा से कहोगे बाबा ये संस्कार तो छूट गया था, फिर पता नहीं कहां से आ गया। तो ये 6 की 6 शाखाओं को काट फेंकना है, विकर्म की शाखा, अब तक जो भी विकर्म किए, पाप किए, 1 सेकंड में उन्हें भस्म कर दो। जैसे संडे की मुरली में था, पार्टी से मुलाकात, वर्तमान को शक्तिशाली बना दो, वर्तमान यदि शक्तिशाली है, एक यदि शक्तिशाली हो गया तो दूसरा हल्का हो जाएगा, पिछाड़ी का है, पिछला है, अब पीछे को क्या देखना, जो हो गया वो हो गया, जो बीत गई सो बीत गई, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। तो उस मुरली में बाबा ने कहा कि ये जो तुम्हारी 6 शाखाएं है, एक एक शाखा को भस्म कर दो, विकर्म की शाखा भस्म कर दो, हिसाब किताब की शाखा भस्म कर दो, नहीं तो हिसाब किताब नए नए बनते ही जाएंगे, अब सीधा परम धाम की बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ और वहीं रहने का अभ्यास करो, और बार बार अभ्यास करो तो ही हल्के होंगे, नहीं तो बोझ विकर्मों का, पाप का भारी करते रहेगा आत्मा, रुड़ नहीं सकेगी फिर। तो देह के भान का, दूसरा देह के संबंधों का, तीसरा देह के पदार्थों का, देह के पदार्थों में आसक्त है, वस्तुओं में आसक्त है चेतना, ये भूल रही है कि वस्तुएं हैं, आज कल नहीं रहेगी, व्यक्तियों से ज्यादा आत्मा वस्तुओं को ज्यादा महत्व देती है कभी कभी, दूसरों के संबंध में भी, गुरुओं की और भक्ति की शाखा है, भक्ति की जंजीर है, ज्ञान में आ गए परंतु भक्ति चालू है, योगी आत्माएं भी भक्ति करती है, कैसे भक्ति कहां, योगियों के शिविर में भक्त छिपे बैठे हैं मुरली क्लास में, जो मांगते हैं वो भगत, भगवान से मांगते रहते हैं, ये दो वो दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, भोग लगवा देंगे, भगवान से भी सौदा। सुबह भी क्लास में सुना रहे थे, एक भाई बड़े बुजुर्ग और साकार बाबा के समय के। बाबा से पूछा, बाबा हम मैं आपको कितने प्रश्न पूछता हूँ अमृत वेला, डायरेक्ट पूछा हिस्ट्री हॉल में। बाबा आए हुए थे अव्यक्त बाप दादा, सामने जाके पूछा बाबा से। बाबा ने केवल 12 ही लोग थे मिलने वाले, हिस्ट्री हॉल था या शायद बाबा का कमरा, वहां बाबा आए थे, 12 ही लोग थे मिलने वाले, बहुत टाइम था हर एक के पास मिलने के लिए। बाबा से पूछा, बाबा मैं आपको रोज अमृत वेले इतने प्रश्न पूछता हूं, आप एक भी प्रश्न का जवाब नहीं देते। बाबा ने क्या कहा होगा, क्या कहा होगा, बच्चे प्रश्न पूछे और बाप जवाब ना दे, ये हो नहीं सकता, परंतु उत्तर तुम कैच नहीं कर पाते क्योंकि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। सीधा प्रश्न पूछा तो सीधा उत्तर दिया बाबा ने। तो भक्ति की शाखा है गुरुओं की शाखा, और फिर हिसाब किताब की शाखा, और छठवीं विकर्मों की शाखा। बाबा ने कहा ये छह शाखाएं, छहों को काट दो, काटो और भस्म भी कर दो, केवल काटने से कुछ नहीं होगा, भस्म कर दो। और बाबा ने उसमें एक और उदाहरण दिया है, जैसे बीज, बीज यदि किसी बीज को भून दिया जाए तो उससे कुछ निकलेगा क्या? कोई बीज उसको भून दो और फिर खेत में डाल दो, बो दो, कुछ निकलेगा? वैसे ही ये जो शाखा है इन सब के बीज को भी परमधाम में रोस्ट कर दो, भून दो, फ्राई कर दो अच्छे से, ताकि कोई वृक्ष, कोई शाखा, कोई डाली, कोई अंकुर अंकुरित ना हो। और उसमें फिर चार अनुभूतियां बताई, मुरली की है, मुरली का हेडिंग था बीज रूप स्थिति और अलौकिक अनुभूतियां। एक अनुभूति बताई, ये जब करोगे बीज रूप स्थिति तो तुमको कुछ अनुभूतियां होगी। एक तो देह से न्यारेपन की अनुभूति, उसका फिर बहुत विस्तार किया है, जैसे वो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं रहती एक बार ऊपर चले गए तो, वैसे ही जब तुम देह के ऊपर जाओगे नीचे जो देह खींचता है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, फिर देह आकर्षित नहीं करेगा, फिर देह के भोग विकार आकर्षण वासनाएं खींचेगी नहीं आत्मा। ये स्त्री, ये पुरुष, ये सबसे परे निकल जाएगी, तो देह से न्यारेपन का अनुभव। दूसरा अनुभव जो बीज रूप स्थिति में स्थित होते हैं, आत्मिक स्वरूप का अनुभव होगा उनको। तीसरा अनुभव अपने घर का अनुभव होगा, और चौथा अनुभव उड़ने का अनुभव होगा। इसका बहुत बड़ा विस्तार किया है, जो ये मुरली पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। तो बीज रूप स्थिति में स्थित होना, एक बीज अंकुरित हो जाए और वृक्ष बन जाए, इसके लिए क्या चाहिए? पांच चीजें चाहिए, पानी, पानी, क्या क्या चाहिए, पानी, जमीन, जमीन, पानी, खाद, खाद ऑप्शनल है, सनलाइट तीसरा, चौथा, चौथा टेम्परेचर, और पांचवा समय। ये पांच चीजें चाहिए। एक बीज जमीन में डाल दो तो सबसे पहले तो जमीन चाहिए, अगर जमीन ही नहीं तो बीज अंकुरित नहीं होगा। एक दूसरा, उसको प्रकाश चाहिए, बिना प्रकाश के वो उगेगा नहीं। और तीसरा पानी, पानी चाहिए, और टेम्परेचर और टाइम। तो ये पांच चीजें हैं। अब जब आत्मा परम धाम में है, इससे अच्छी कोई जमीन है क्या? परम धाम से अच्छी कोई जमीन है? क्यों नहीं? ये तत्व है नीचे बाज, वहां कोई तत्व नहीं, वो तत्वों के पार की दुनिया है, वो छठा तत्व वहां है, ब्रह्म तत्व वहां है। इस भूमि में, ये भूमि बड़ी उपजाऊ है, इस भूमि में, इस अर्थ में, इस सॉइल में हीलिंग प्रॉपर्टीज है, ऐसा कहते हैं। मड थेरेपी और कितनी थेरेपीज है संसार में। ये जो प्रकृति है और पांच तत्व है, कितना सारा मेडिकल की थेरेपीज, अल्टरनेटिव ब्रांच जो है, रेकी थेरेपी, शक्ति लेते हैं हाथों में और पेशेंट्स के ऊपर हाथ रखते और एनर्जी हीलिंग करते, ड्रगलेस थेरेपी, सनबाथ, नेचर क्यूर, स्टीम थेरेपी, ऐसी बहुत सी थेरेपीज है। ये सब क्या प्रयोग करते? तत्वों का प्रयोग करते, पांच तत्वों का। दर्द हो गया तो लेप लगाते वहां मिट्टी का, ऐसे संसार में बहुत है। उनका क्या मानना है, क्या मान्यता है इस धारणा के पीछे, कि तत्वों में हीलिंग एनर्जी, उपचारक शक्ति है। अगर यहां के पांच तत्व, उनमें इतनी हीलिंग एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है, तो उस तत्व में कौन सी हीलिंग एनर्जी होगी जो कि इन तत्वों से पार है। यह तत्व तो तमो प्रधान है, क्या परम धाम का ब्रह्म तत्व भी सतो रजो तमो से गुजरता है? कि अभी वो भी तमो प्रधान है हमारे साथ साथ, वो कभी भी तत्व इस तरह की अवस्थाओं से नहीं गुजरता है। ये तत्व गुजरते हैं जो कभी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान है। तो ये तमो प्रधान तत्व अभी भी उतने इतनी ऊर्जा है कि लोग उससे दूसरों को ठीक करते हैं या खुद को ठीक करते हैं उस ऊर्जा से। इसी को ब्रह्मांड कहते हैं और कहते हैं ब्रह्मांड में ऊर्जा है, ब्रह्मांड में शक्ति है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे शरीर में आ जाए और मेरे अंग प्रत्यंग ठीक हो रहे, ऐसे संकल्प करते हैं, जबकि ये ब्रह्मांड है ही नहीं। ब्रह्मांड तो वो है ऊपर, तो उस ब्रह्मांड में जो तत्व होगा और उसमें क्या ऊर्जा होगी, यदि एक बीज जो इस धरती पर बोया जाए वो वटवृक्ष बन जाता है, तो वो बीज जो उस परम धाम की भूमि तो नहीं कहेंगे उसको क्या कहेंगे, वो जो परम धाम में बोया जाता है, उसमें कैसी एनर्जी होगी? तो परम धाम के उस शुद्धतम वायुमंडल में, वातावरण में स्वयं को स्थित कर देना, अर्थात वहां की सारी ऊर्जा स्वयं में ग्रहण करना। बाबा ने कहा है केवल तुम्हें मुझे याद नहीं करना है, घर को भी याद करना है। क्यों? क्योंकि घर में भी शक्ति है, घर में भी अपनी अलग ऊर्जा है, उस घर को भी याद करना है। तो सबसे पहला बीज को क्या मिलेगा उधर? सॉइल, मिट्टी, परमधाम की मिट्टी। परमधाम की मिट्टी अपने मस्तक पर लगा लेना ऊपर जाकर, बहुत पावन है। जैसे भारत की मिट्टी बहुत पावन है, सबसे ऊंचा तीर्थ, उस तीर्थ की वो भूमि धन्य, धन्य भागवान पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। अयोध्या के लिए कहते हैं कि ये भूमि धन्य है जहां पर नाथ है राम तुमने पाव धारा है। तो वो तो स्वयं भगवान के रहने का ही स्थान है, तो वो भूमि, वो जमीन, वो तीर्थ स्थान की भूमि और वहां की मिट्टी कितनी पावन होगी। हमारी अपनी भाषा में, हम यहां रहते हैं, वहां ना तो मिट्टी है ना कुछ, ना तद्भासे ते सूर्य, न शशांक न पावक, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। वहां एक बार जाने के बाद वापस नहीं आता है कोई, अर्जुन सुन वो मेरा धाम है। तो उस परम धाम में बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाना, एक सॉइल। दूसरा पानी, कौन सा पानी है वहां पर? परमात्मा प्रेम का पानी है वहां पर। कौन सा पानी है? प्रभु प्रेम का पानी। बीज में पानी डल रहा है, भक्ति मार्ग में हमने बहुत लोटियां चढ़ाई उस पर, शिव पर, अभी तुम ऊपर आओ तो वो तुम्हारे ऊपर लोटी चढ़ाएगा ऊपर से। तो परमात्मा प्रेम का पानी है वहां पर, उस परम धाम में जाकर स्वयं को प्रभु प्रेम में डुबो देना। आज सुबह की साकार मुरली, ओहो बाबा, क्या कहो बाबा से, ऐसे प्यार से बात करो कि क्या हो जाए, आंख से आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए, ठार हो जाओ। ऐसा तुमको नशा चढ़ना चाहिए, तुमको नशा ही नहीं चढ़ता। रूहानी फकूर, रूहानी नशा, रूहानी रुहाब, संडे की मुरली, ठंडे हो जाए, फ्रीज, माइनस में चले जाओ। उसके और हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। क्या कहा बाबा ने, बाबा तुम्हारे और हमारे बीच में कोई भी खड़ा नहीं रहेगा आज की मुरली में, है ना। तो परम धाम में स्थित हो जाए और अनुभव करना पानी प्रभु प्रेम का, ईश्वरीय प्रेम का, डिवाइन लव का। प्राणी मुझ पर पड़ रहा है और बीज अंकुरित हो रहा है। तीसरा प्रकाश, वहां कौन सा प्रकाश है? वहां का जो प्रकाश है वो स्वयंभू है, सूर्य का नहीं है, चंद्रमा का नहीं है, सितारों का नहीं है, कोई बल्ब नहीं है वहां, कोई ट्यूबलाइट नहीं है वहां, कोई दिया नहीं है वहां, वो स्वयं प्रकाश है। उस ब्रह्म तत्व में, उस ब्रह्म लोक में, उस ब्रह्म देश में जाकर अनुभव करना कि मैं उस दिव्य प्रकाश में हूं, मेरे चहुओर वो दिव्य प्रकाश है, वो बीज उस प्रकाश में है, ये अनुभूति। चौथा तापमान क्या है परम धाम का? टेम्परेचर, परम धाम का टेम्परेचर क्या तापमान है परम धाम का? अगली बार जाओगे तो थर्मामीटर लेके जाना गिनने के लिए, ठीक है? परम धाम का कोई तापमान है क्या? तापमान रहित है वो, टेम्परेचर लेस नेस। तापमान जैसे शब्द इस धरती के है, वहां पर ऐसी कोई चीजें नहीं होती है, और अगर है भी तो सबसे सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट तापमान है उस बीज को अंकुरित होने के लिए। जो भी तापमान होगा, जैसा भी तापमान होगा, सबसे बेस्ट होगा वो। और पांचवी चीज क्या चाहिए बीज के लिए? समय। कोई बीज आज डाला और कल के कल झाड़ नहीं खड़ा होता है, टाइम लगता है। इसके लिए क्या कहा पुरुषार्थ में, जैसे ब्रह्मा बाप ने बीज रूप स्टेज अर्थात पावरफुल स्टेज का विशेष अभ्यास करके पूरे विश्व को सकाश दी। अभ्यास कौन सा अभ्यास करना है? परम धाम में स्थित होने का, बीज रूप स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है, बिंदु रूप स्थिति, सारे संकल्प उसमें समा गए एक ही स्थिति में। यह सर्वोच्च अवस्था है योग की। योग की भिन्न भिन्न स्टेजेस है, एक है आत्माभिमानी स्थिति, इस पर भी कभी क्लास हुई थी, आत्माभिमानी स्थिति। दूसरा है अशरीरी स्थिति, तीसरा है विदेही स्थिति, चौथा है अव्यक्त स्थिति, पांचवा है फरिश्ता स्थिति, छठवा है बीज रूप स्थिति, सातवा है कंबाइंड स्थिति। ये अलग अलग अवस्था है योग की। विदेही, विदेही बोला, विदेही तो ऐसी आठ है, इसमें थोड़ा 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 डिफरेंस है जो कई बार अलग अलग क्लासेस में हमने चर्चा की, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, अभी मुख्य है बीज। तो परम धाम में बीज रूप स्थिति में स्थित होना, कैसे स्थित होंगे और कैसे इस अवधि को बढ़ाएंगे? ऐसे नहीं गए, स्थित हुआ, टच किया और चलो नीचे। टाइम, परम धाम का रहने का टाइम को बढ़ाना है, तो ही योग में मजा है। नहीं तो केवल रूरियान करना बाबा से, ये भी योग है। सूक्ष्म वतन में जाना, फरिश्ता रूप धारण करना, विश्व को सकाश देना, यहां जाना वहां जाना, इधर घूमना उधर घूमना, इसको सकाश उसको सकाश, ये सब भी एक रीति से योग है। या पांच स्वरूपों का अभ्यास या तीन स्वरूपों का अभ्यास, पर जो सबसे शक्तिशाली योग है वो कौन सा है? बीच का, जिसमें चेतना रुक गई है एक जगह, नो माइंड की स्टेज है वो, जिसको नो माइंड की स्टेज कहते हैं। वेदांत जिसे मनोनाश कहता है, सबसे ऊंच हाईएस्ट स्टेज जेन ने जिसे केंशो कहा है, सैटोरी कहा है, क्रिश्चियन जिसे बी एटीट्यूड कहते हैं, बुद्ध ने जिसे निर्वाण कहा है, जैन धर्म ने जिसे केवल ज्ञान कहा है, केवल ज्ञान की अवस्था, मोक्ष की अवस्था, जीवन मुक्ति की अवस्था, कैवल्य की अवस्था, ये अलग अलग नाम दिए हुए हैं। निर्बीज समाधि की अवस्था, एक है सबीज समाधि, एक है निर्बीज समाधि, एक है सविकल्प समाधि, एक है निर्विकल्प समाधि, ये सब हाईएस्ट स्टेज के नाम है, जो भिन्न भिन्न धर्मों ने भी अपने अपने रीति से उस स्टेज तक पहुंचने की कोशिश की। उन्हें भगवान का परिचय नहीं था, परंतु अभ्यास जरूर किया उन सब ने। देह से उनको इतना तो पता चल गया कि जो सत्य है देह के बाहर है, देह में नहीं है। देह जब भूल जाए उसके बाद ही सत्य की अनुभूति होती है। तो एक तरफ तो भगत है, दूसरी तरफ सन्यासी है, और तीसरी तरफ ब्रह्मा कुमारी से। ये तीन भागों में संसार विभाजित है। भगत भक्ति की हाईएस्ट स्टेज में पहुंचता है, जहां पर उसको लगता है वो और मैं एक ही हूं। वो गोपियां कृष्ण जैसा गाने लगी, कृष्ण जैसा नाचने लगी, झूमने लगी, बंसी बजा रही है, उद्धव समझाता है अरे तुम क्या कर रहे हो, वो तो भगवान है। वो कहती है कौन सा भगवान, वो यहां हमारे साथ खेला था, यहां हमारे साथ डांस किया था, हमने रास रचाई थी, वो कृष्ण ही हो गई गोपिया। वो एक भगत की अवस्था है, हाईएस्ट स्टेज भक्ति की, रति भक्ति, जिसमें भक्त और भगवान और भक्ति एक हो जाते हैं। दूसरा है सन्यासी। सन्यासी शुरुआत करता है मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, ऊपर 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 जाता है, तत्वमसि, वो और मैं एक हूं, सर्वखलविदम ब्रह्म, सब ही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म और प्रज्ञा एक ही है। लास्ट में पहुंचता है हाईएस्ट स्टेज कि मैं और वो एक ही हूं, एक ही ज्योति है। ये सन्यासी की अवस्था है। और हम यहां से शुरुआत करते हैं, कहां से शुरुआत करते हैं? मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं, पर हमारी एक स्टेज ये भी है कि तुम बाप के साथ कंबाइंड हो, ये कंबाइंड स्टेज हमारी। तो हमारी कंबाइंड स्टेज या बाप समान स्थिति हाईएस्ट स्टेज इधर, दूसरी सन्यासियों की निर्विकल्प समाधि, और तीसरी उधर भक्तों की स्टेज। भक्तों की स्टेज भी कैसी है? वो और मैं एक, तुका मने होती तुझी माझी एक ज्योति, उसकी और मेरी एक ज्योति हो गई। जो जीसस क्राइस्ट कहता है तुम कौन हो, पूछा प्रश्न पीटर ने, वो कहता है आई एम सन ऑफ गॉड। दूसरा शिष्य कहीं और पूछता है बाइबल में, पर तुम्हारे पिता है कहां, वो कहता है माई फादर इज इन मी एंड आई एम इन माई फादर, मेरे पिता मुझ में और मैं उनमें हूं। पर तुम्हारे पिता है कहां, माई फादर दैट आर्ट इन हेवन, वो स्वर्ग में, पर स्वर्ग कहां है, स्वर्ग का राज्य द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, तुम्हारे ही भीतर है। तीसरा शिष्य पूछता है पर तुम्हारा दोनों का संबंध क्या है, तुम पुत्र हो वो बाप है, और वो कहता है माई फादर एंड आई आर वन। बस इसी के लिए उसको सूली पर चढ़ा दिया। धर्मग्लानी करते हो, कहते हो तुम ही पिता हो, माई फादर एंड आई आर वन। ये तीन अवस्थाएं चेतना की, जब बहुत दूर है तो वो भगवान, वो मेरा पिता, मैं उसकी संतान। जब और आगे चले गए थोड़ा ज्ञान में, तो तुम तो यही कही बाबा मेरे आसपास हो, सर्वव्यापी बना रहे। वो सर्वव्यापी है नहीं, हम ही बना रहे उसको, सोच रहे जहां मैं हूं वहां बाप है, वो मेरे आसपास घूम रहा है। और हमारी आंखें लास्ट स्टेज, तुम बाप के साथ कंबाइंड हो, एक, माई फादर एंड आई आर वन। तो ये भक्ति मार्ग, ये सन्यास मार्ग और ये ब्रह्मा कुमारी, तीन भागों में संसार विभाजित है। वो दोनों को पता नहीं, पर हमें पता है कि कैसे हम उसके साथ एक है। तो बीज स्थिति अर्थात वो जो बीज है सृष्टि का, मया तद्मिदं सर्वं जगत व्यक्ति मूर्ति नाम अस्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेष्वस्थितः। ये सारा संसार है अर्जुन, मुझ में स्थित है। आई एम द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं इस संसार का आदि मध्य और अंत हूं। अहम आदिश्य मध्यश्य, आई एम द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। वो जो संसार का, इस मानवता का जो बीज है, उस बीज के साथ एक, उसके ही स्थिति में स्थित हो जाना, ये सबसे पावरफुल स्टेज है। तो क्या करेंगे कि जिससे बीज रूप स्थिति बहुत शक्तिशाली हो जाए और लंबा समय रहे? क्या अभ्यास करेंगे? सबसे पहले तो परम धाम में स्थित हो जाना, पहले तो शरीर से बाहर निकलना, सूक्ष्म वतन में जाना, फरिश्ता रूप धारण करना, ये सब प्रिलिमिनरी स्टेजेस है। फिर सूक्ष्म वतन में सर्व संबंधों का अनुभव करना, बाबा से थोड़ा वरदान, तिलक विलक, फॉर्मेलिटीज, लेन देन वो सारा कर लेना, वो भी योगी है एक रीति से, बाप से तो जुड़े हुए हैं, वो सब कर लेना। और फिर सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देना वहीं, और केवल आत्मा उड़कर ऊपर चली जाए उस धाम में। और उस परम धाम में स्थित होकर उस परम धाम को पहले देखना, अपने घर को ही देखना चाहिए ना। हमने देखा अपने घर को? अच्छे से देखना चाहिए, कौन कौन कहाँ है, क्या क्या सेक्शंस है, किधर किधर क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन कहाँ खड़ा है, ठीक से खड़ा है कि नहीं खड़ा है, अब किसका नंबर आया है। एक तो गया, वो कहता है अब मेरा नंबर है, अब मैं जाऊंगा नीचे। फिर एक आत्मा दूसरी आत्मा से क्या बात कर रही है, इस पर भी एक नाटक लिखा जा सकता है। परम धाम में एक आत्मा दूसरी आत्मा से क्या बात करती है, ये कवि लोग होते हैं ना, वो ये सब सोचते हैं, कल्पनाएं करते हैं, चित्रण करते हैं इस तरह का। तो परम धाम में जाना और उसको देखना, परम धाम को कैसा दिखता है, वो कैसा है दिखने में, दिखने में कैसा है? लाल तो यहां इस संसार का रंग है ये सारे रंग इस संसार के, वहां तो जाकर ही पता चलेगा कौन सा है। हाँ वो तो चलो बोलने के लिए, परंतु लाल रंग तो संसार का रंग है। यहाँ के बाबा यहाँ के उदाहरण देता है सब, अपनी बातें बताने के लिए यहाँ के उदाहरण लेता है, अपनी बात को टंगाता है उसपे, नहीं तो उसकी बातें तो निराकार है, कैसे बताएगा? बताने के लिए कुछ तो चाहिए, नहीं तो ये जो झूला, कौन सा झूला, झूला होता है क्या कोई खुशी का, पहाड़ी झूला, माउंटेन, ये क्या क्या बातें होती है, ये सब काल कवि की बातें है, सारी काव्य है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। तो परम धाम में पहुंचना, परम धाम को देखना, सर्वे करना परम धाम का, थोड़ा सा इनिशियल सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे, वहां स्थित होकर अपने आप से बात करना, मैं कहां आया हूं, ये ब्रह्म लोक है, ब्रह्म को देखना, ये निर्वाण धाम है, मैं आवाज से परे की दुनिया में आ गया हूं, यहां आवाज है ही नहीं, मौन है, बे आवाज चुप्पी, इटर्नल साइलेंस। मैं अपने घर में आया हूं, मैं मुक्ति धाम में आया हूं, इसी के लिए तो सारा संघर्ष था कि मुक्त हो जाओ, अब मैं मुक्त हूं, सब बातों से मुक्त हूं, या ना आत्म या ना शरीर है, ना शरीर के संबंध है, या ना शरीर के पदार्थ है, ना शरीर के भोग, ना शरीर के आकर्षण, ना शरीर की वस्तु है, या शरीर का कुछ नहीं है। मैं परम धाम में, सबसे ऊंचे धाम में, सबसे ऊंचे तीर्थ में, पवित्र धाम में, रुद्र धाम में, निर्वाण धाम में, ब्रह्म लोक में, ब्रह्म देश में, ब्रह्म धाम में, लाइट हाउस, मैं शिवालय में हूं। अलग 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 नामों में रमन करना, क्योंकि हमें लंबा समय टिकना है ना, खाली चक्कर लगा के नहीं आना है, टिकना है वहां, रहना है वहां, और फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना परम धाम में। मैं आत्मा, मेरे साथ स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सारे अपने स्वरूपों को याद करना, और फिर शिव बाबा को सामने देखना, महाज्योति, और उसकी किरणें मुझ पर आ रही है, एक एक सातों, फिर से वही ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये सातों किरणें सागर से मुझ में समा रही है। फिर एक अभ्यास करना कि मैं और वो एक हूं, माई फादर एंड आई आर वन, वो और मैं एक, अब हम दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहा है, जैसे वो है वो मैं हूं, वो सागर तो मैं भी सागर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उसकी संतान हूं, मैं उसका बच्चा हूं, ये सब नहीं, एक। बाबा ने कहा ये जो भी कंबाइंड स्टेज है, बाप के साथ संयुक्त स्टेज, ये सबसे पावरफुल स्टेज है, और यही बीज रूप स्थिति है। ये देखना, वो बीज ऊपर, ये वृक्ष नीचे, अर्धमूलम मदशाखम, ऊपर बीज नीचे वृक्ष, और मेरी शक्ति सारे वृक्ष को जा रही है, एक एक शाखा को जा रही है, संसार की एक एक आत्मा जो नीचे है उनमें पावर भरती जा रही है मुझसे, क्योंकि मैं कंबाइंड हूं। फिर एक अभ्यास है, परम धाम के अभ्यास है ये सारे, कि परम धाम शिव बाबा ऊपर, मैं नीचे, उसकी शक्ति मुझ में और मुझसे संसार में। फिर एक दूसरा अभ्यास है परम धाम का, साक्षी होकर परम धाम से विश्व नाटक को देखना। मैं परम धाम में हूं, देख रहा हूं आत्माएं कैसे नीचे उतर रही है, देखो सतयुग में आई, त्रेता में आई, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और फिर तमोप्रधान हुई, और मैं देख रहा हूं कि शिव बाबा देखो कैसे एंट्री कर रहा है, वहीं बैठ के सब कुछ देखना कि वो जा रहा है नीचे, और फिर देखना आत्माएं ऊपर भी आ रही है। ये सारा अभ्यास कहां करना है? परम धाम में करना है, क्योंकि हमें लंबा समय परम धाम में टिकना है, और परम धाम में जो आनंद है वो और किसी योग में आनंद नहीं है, क्योंकि परम धाम में आत्मा कांच की तरह बन जाती है, उसमें ऊपर से शिव बाबा की किरणें रिफ्लेक्ट होती है, और वो अपने आप सब जगह जाती, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। फरिश्ता स्थिति में इधर जाओ उधर जाओ, इसके पास उसके पास, ये दुख देता है उसको थोड़ा सकाश दो, ये ज्ञान में नहीं चलता है उसको सकाश दो, ये बिल्कुल हमारी चलने नहीं देता उसको सकाश, ये हमारे ऑफिस में बड़े विघ्न क्रिएट करता है उसको सकाश, इसको क्षमा उसको क्षमा, इधर उधर घूमना पड़ता है थोड़ा। बीज रूप स्थिति में लाइट हाउस और माइट हाउस की स्टेज है। टाइम बीज रूप स्थिति में स्थित होने का कब स्थित होंगे? अमृत वेला कब? अमृत वेला कब? अमृत वेला जितना जल्दी हो सके उतना, ब्राह्मणों के उठने के समय से पहले, ब्राह्मण उठते हैं 3:30 बजे, उससे थोड़ा पहले, नहीं एकदम 2 बजे, बहुत ज्यादा पीछे मत जाओ, थोड़ा और आगे आओ। बीज रूप स्थिति के अभ्यास के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस, सुबह का जो समय है प्रातः स्मरण, वो सतोप्रधान समय है, उस समय शरीर भूल जाए, शरीर जैसे मिट गया, शरीर जैसे खत्म हो गया, शरीर जैसे रहा ही नहीं, शरीर की कोई स्मृतियां नहीं रही, शरीर के सारे भोग भस्म हो गए, और केवल बच गई मैं आत्मा, और चली ऊपर सीधा परम धाम, और उस परम धाम में स्थित हो जाना, और ये अभ्यास निरंतर हो, अधिक से अधिक समय हो, केवल परमधाम की स्थिति। पर परमधाम की स्थिति तब हो सकती जब दिनचर्या ठीक हो, जब दिनचर्या में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जब दिनचर्या श्रीमत अनुसार हो। दिनचर्या में ही झगड़े चालू है इससे उससे, तो परमधाम की स्थिति तो छोड़ो। यहां तो उस आत्मा की चिंतन चालू है जिसके साथ हिसाब है, उसी को देख रहे, उसी का सोच रहे। परमधाम में भी वही दिखता है। ये सबसे नहीं हो। बीज रूप स्थिति के लिए नष्ट मोहा, बीज रूप स्थिति के लिए वैराग, यहां का कुछ भी नहीं चाहिए, तब आती है। बीज रूप स्थिति तपस्या की स्थिति है। इधर भोग विलास चालू है दिन भर, और उधर अमृत वेला बीज रूप स्थिति, इतनी सस्ती है क्या? इधर ये देखू वो देखू, ये घूमू वो देखू, टीवी मोबाइल इंटरनेट, ये सीरियल वो सीरियल, इससे बात उससे बात, जहां दिन भर ज्ञान चिंतन चालू है, दिन भर मनन चालू है, दिन भर अध्ययन चालू है, शाम का योग शक्तिशाली चालू है, ज्ञान का डिस्कशन जहां हो रहा है, सेवाओं में संपूर्ण निरंकारिता है, किसी से झगड़ा नहीं, तुम जीत जाओ, जीतने दो सबको, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास सब कुछ। दोज हु आर द लास्ट ईयर शैल बी द फर्स्ट इन माई किंगडम, जीसस कहता है, जो यहां अंतिम है वो मेरे राज्य में प्रथम होंगे। अंतिम अर्थात जिनको ये नाम मान शान की कामनाएं नहीं है, जो आगे आगे नहीं करते रहते, एग्जीबिशनिस्ट नहीं है, जो दिखावे वाले नहीं है, तो दिनचर्या में जीतने दो सबको। हमें अपनी स्थिति प्यारी है या जीत प्यारी है? स्थिति हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरों को जीतने दो, खुश होने दो, मानने दो कि हम महामूर्ख है, उसमें भी फायदा है, निरंकारिता के मार्क्स तो मिल जाएंगे थोड़े से। तो दिनचर्या में, कार्य क्षेत्र में निरंकारी, तपस्या में मगन, सारी दिनचर्या श्रीमत अनुसार, और ज्ञान का चिंतन निरंतर, ज्ञान का। आज की मुरली में तुम्हारे पास अलौकिक बुद्धि है, फर्स्ट पैराग्राफ मुरली का। तुम्हारी बुद्धि कैसी है? अलौकिक, अलौकिक बुद्धि है तुम्हारे पास। तो उस परमधाम में स्थित होने के लिए परमधाम के नामों की लिस्ट बनाओ, परमधाम में क्या क्या करना है सोचो, परमधाम को देखो, परमधाम को विजुलाइज करो, परमधाम के बारे में पढ़ो, परमधाम का अनुभव करो। मिस करो अपने घर को, मुझे अपना घर याद आ रहा है, घर याद आ रहा है, ऐसे अपने आप को करो। नॉस्टैल्जिया, इंग्लिश में कहते हैं नॉस्टैल्जिया, अर्थात घर की याद, कब मैं घर जाऊंगा, कब मैं घर जाऊंगा, अब मैं घर पहुंचा। गेट खोलते हुए देखो परमधाम के, परमधाम के द्वार खुले और मैं आत्मा प्रवेश कर रही हूं। आश्चर्य देखो, ये कौन सी जगह है, कितना बदल गया ये 5000 साल में। अब जब मैं निकला था तो यहां, तो यहां एक बिल्डिंग थी, वो कहां है? ये कहां गया? अरे यहां एक मंदिर था, वो कहां? दिखाई नहीं दे रहा है। कितना बदल गया इतने 5000 साल में। ऐसे थोड़ा आश्चर्य, छोटे बच्चा कैसे आश्चर्य करता है हर चीज में, अवाक आश्चर्य होता है उसमें, विस्मय, विस्मय का भाव। हिंदी में दो शब्द है, एक है विस्मय, एक है आश्चर्य। क्या अंतर है? एक है विस्मय, एक है आश्चर्य, दोनों अलग अलग शब्द है। शब्दकोश कहता है दोनों का अर्थ एक ही है, पर अंतर है। आश्चर्य बाहर है, विस्मय अंदर है। आश्चर्य अर्थात अरे ऐसा, विस्मय अर्थात अंदर ही अंदर, वो पॉजिटिव है। आश्चर्य में शॉक है, विस्मय में आह इतना अच्छा है, आह ये यहां, ये यहां। ऐसे परमधाम में चक्कर लगाना, गलियों में, परमधाम की गलियां देखना, क्या साइन बोर्ड लगे हुए, और फिर देखना, अच्छा वो वहां है, ओ अब समझ में आया। तो ऐसा रमणीक योग बनाना परमधाम का, ताकि हम परमधाम में टिके, उस बीज रूप स्थिति में टिके। जैसे वो बीज है वैसे हम भी बीज हो जाए, जैसे मैं हूं वैसे तुम भी हो जाओ, जैसे मैं साक्षी हूं तुम भी साक्षी हो जाओ। तो उसी के समान साक्षी, बीज रूप स्थिति और एकाग्र वो अवस्था योग की सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी योग है। उसी में स्थित हो जाना और कम से कम संकल्प वहां पर, नो माइंड की स्टेज है। तो ये अभ्यास बाबा ने करने को कहा है। और जो मुरली की डेट बताई, एक बार टाइम मिले तो पढ़ लेना, 27 मार्च 1982। तो कल सुबह जो अमृत वेला होगा उसमें बीज रूप स्थिति का अभ्यास करना है सबने। ओम शांति।